हम सब बहुत जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय सम्माननीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो आपने भाई जी का परिचय सुना, इसमें मैं एक और विशेषता लाना चाहूंगा कि भाई जी का परमात्मा के साथ का बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ के अनुभव हैं, और ऐसे हैं कि भगवान इनसे बात करना पसंद करते हैं। और विशेष परमात्मा ने आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को वरदान दिया कि सत्य गीता ज्ञान पूरे विश्व में क्या है, उसकी जिम्मेवारी परमात्मा ने भाई जी को दिया। आज हम बहुत बहुत लकी हैं कि आदरणीय भाई साहब हम सबके मन में होने वाले छोटे मोटे जो प्रश्न हैं उसका बहुत गहराई से, रमणीकता से और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम सबको उसका समाधान कराएंगे। भाई साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसा परिचय में कहा गया कि आप करीब 17 साल तक फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहे हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, तो जनरल हमारा ये प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न ये है कि उस समय पे
इसको नजदीक करके ढक्कन खोल दो। हाँ जी,
आप किस प्रकार आध्यात्म की तरफ आपका आकर्षण हुआ, आपने क्यों आध्यात्मिकता को पसंद किया, क्या वो कारण थे कि आपका आध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहा या जुड़ाव रहा? What made you get into the Brahma Kumaris?
देखिए, ऐसा है कि मैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ज्वाइन करने से पहले ही 1953 में ब्रह्मा कुमारीज में आ गया था। मेरे माता पिता इस ज्ञान में थे और उन दिनों में एक गलतफहमी प्रसिद्ध थी कि जो ब्रह्मा कुमारीज में जाएगा वो अपना घर बार छोड़ देगा। तो मैं उस वक्त लॉ कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी ब्रह्मा कुमारीज में जाने लगे और रोज लगत से घर आके सुनाते थे ये हुआ वो। तो मेरी माताजी को किसी ने कह दिया कि ये घर बार छोड़ जाएगा। हमारे घर में लेडी सत्संग होता था थर्सडे को, उन माताओं ने भी उनको कह दिया, तो मुझे भेजा गया था जाके देखो पिताजी कहाँ जाते हैं। इस हिसाब से मैं गया था। फिर मैंने जब तसल्ली कर ली कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने माताजी को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे फर्टिलाइजर तो मैंने बाद में ज्वाइन किया है, तो जब हमारे ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो मुझे उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैंने बताया मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बोले अच्छा पूरी कर लो। तो जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली तो दिल्ली में एक सदर बाजार है बिजनेस एरिया, वहां मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस शुरू किया। फिर एक साल बाद मैं माउंट आबू आया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, उन्होंने कहा ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो हर वक्त तुम्हें क्लाइंट का ध्यान रहेगा, एक सरकारी नौकरी कर लो। इस हिसाब से मैंने सर्विस की थी और उनके कहने पर ही की थी। और हमारे आप जानते ही हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशन में सब लोग कर्मयोगी हैं, तो मैं भी वो काम 17 साल करता रहा और साथ साथ मेरे घर में सेंटर भी था भाकड़ा नंगल में, पंजाब एरिया में मैं ईश्वरी सेवा भी करता हूं। अब जहां तक प्रश्न है, वैल्यू शिफ्टिंग होता है, धीरे धीरे मैंने देखा कि वहां पर जॉब में मैं क्या कुछ कर पाता हूं और इस संस्था में मैं क्या कुछ कर पाता हूं, तो मैंने फैसला किया कि मैं इस तरफ आ जाऊंगा तो ज्यादा सेवा होगी। तो मैंने इसीलिए रिजाइन कर दिया 1972 में टू बी अवेलेबल फुल टाइम फॉर द ब्रह्मा कुमारी, एक रीजन तो ये था। दूसरा एक और भी रीजन था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सिखाते हैं, जिसको पता हो यहां कोई अकाउंट्स का व्यक्ति बैठा हो, कि जो आता है वो गेन है और जो जाता है वो लॉस है। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, ऑल दैट कम्स इज गेन एंड ऑल दैट गोज आउट इज लॉस। तो ब्रह्मा कुमारी में मैंने सीखा इसका उल्टा है, कि देने में कमाई होती है और लेने में स्वार्थ होता है। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि ये तो उल्टी बात है, सब कह रहे कि लेने में फायदा है, अकाउंटेंसी खास सिखा रही है और भगवान सिखा रहा है देने में फायदा है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि हमारे पूर्वज तो देवता थे और वो देते थे, और वैसे भी आप किसी को सम्मान देंगे, सम्मान में स्वमान मिलेगा। फिर मुझे किसी ने एग्जाम्पल दिया कि किसी को 100 का नोट देना हो तो आपका हाथ ऊपर है और 1000 लेना हो तो नीचे है। फिर मैंने सोचा कि ये तो पक्का ही मुझे, हमारी संस्था में तो कहते दोनों काम करो, पर मैंने ऑप्शन करके मैंने कहा मैं तो इसमें ही लग जाऊं। इस तरह से हुआ।
बहुत सुंदर। शायद हम ये नहीं आज तक समझ पाए कि लेने देने में क्या नफा नुकसान है, और भाई साहब आपने अकाउंटेंसी स्टाइल में हमको आध्यात्मिकता के बहुत सुंदर प्रिंसिपल्स आपने हमें बताए। दोस्तों, ये बहुत सुंदर दिल का दिल के साथ का संवाद है, इट्स अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में लिख करके हमारे तक पहुंचा सकते हैं हमारे भाई बहनों के द्वारा, वो भी हम फिर लास्ट में इसको लेंगे। भाई साहब, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़े और उसके साथ आपने मोर देन 17 ईयर्स तक आपने कार्य भी किया, आपने कर्म योग की बात कही। एक जो प्रश्न हम सबके जहन में आता है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सिंसियर हैं, हम बहुत ऑनेस्टली डेडिकेटेड रीति से कार्य करते हैं ऑफिस का जो भी कारोबार होता है, लेकिन जब करवाने की बात आती है, किसी और से करवाना है, क्योंकि यहां पे बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो पूरे कमांड को, यूनिट को हैंडल करते हैं, जब काम करवाने की बात आती है तो शायद उनमें वो निस्वार्थता, डेडिकेशन जब नहीं होती है और वो काम नहीं करते हैं, और ऊपर वालों से हमको जो प्रेशर होता है तो हम भी थोड़ा विचलित हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमको भी गुस्सा करना पड़ता है, तो कैसे शांत रहकर काम करवाएं वो हम आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है। हम तो शांत हैं, हम तो सॉफ्ट हैं, लेकिन जब सामने वाला कर नहीं रहा है तो फिर हमको थोड़ा सा एजिटेशन होता है, क्रोध आता है, तो क्या करना चाहिए?
ये सब सर्विसेज से हैं, वहां की नियमावली जो चलती है वो चलती है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में एक नीग्रो भाई पुलिस सर्विस में था, वो बीके था, उसने अपने बॉस से, क्योंकि मैं इंडिया से गया था, मेरी मुलाकात फिक्स करवा दी। वो एक क्रिश्चियन ऑफिसर था, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पुलिस चीफ जो होता है बहुत बड़ा उसका ऑफिस होता है, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वगैरह बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे ले गया तो वो बोले कि देखिए आई एम नॉट स्पिरिचुअल। मैंने कहा नेवर माइंड। तो फिर हंस के कहते हैं कि ये बताओ मुझे गुस्सा क्यों आता। तो ऑफ हैंड पूछा तो जो मेरा अनुभव था, मैंने कहा आपको गुस्सा इसलिए आता है कि आप अपने जूनियर से अपनी क्वालिटी का काम एक्सपेक्ट करते हैं, और क्योंकि वो जूनियर है वो कर नहीं पाता, आपको गुस्सा आ जाता है। अगर आप ये सोचें कि आपकी क्वालिटी का काम वो कर सकता है तो आपकी सीट पर उसे होना चाहिए। मैं लग गया। तो भाव ये है कि नॉर्मली हम अपने स्टैंडर्ड से, अपने सबॉर्डिनेट से एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो कुछ ज्यादा है। बाकी रोल मॉडल देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी में सारे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, यहां भी पोजीशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई गुस्सा नहीं करता। और काम कितना प्यार से चलता है। तो असल में इंसान आज की दुनिया में जबकि इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना स्ट्रगल है, इतनी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, असल में इंसान प्रेम का सहानुभूति को तरसता है। अगर उसी व्यक्ति को जो ऑलरेडी बेचारा मरा हुआ है आप उसको और दबा देंगे दब तो वो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर है कि आई एम सुपीरियर। अगर आप उसको जरा सा प्यार दे देंगे तो वो जिंदगी भर और सच्चे दिल से आपकी सेवा करेगा। आज हमने ऑफिस में देखा है, आजकल ऑफिस में यूनियन बने हुए हैं इत्यादि इत्यादि, तो हर एक लेवल वाला सेफ है, उसकी जॉब सेफ है सिविल में। तो क्या करते हैं, बेटा कह के काम कराते हैं, कोई पीएन है या कोई है, बेटा कह के कराते हैं तो प्यार से कर देता है। अगर उसको उस एंगल से देखेंगे तो ही शोज मैनी थिंग्स कि मेरे ये रूल है, मेरे ये मैं ये नहीं करूंगा, मैं पानी का गिलास नहीं ला के दूंगा, मेरी ड्यूटी नहीं। इसलिए स्नेह बहुत इफेक्टिव है, किसी ने ट्राई नहीं किया होगा क्योंकि एक प्रोसेस तरीका चला आ रहा है, उसको हम डिसिप्लिन गिनते हैं। आपको बिना डिसिप्लिन के लोग डिसिप्लिन्ड हो अच्छा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक थानेदार है, थानेदार के यहाँ पिस्टल रहता है। आप बताइए वो थानेदार अच्छा है जो जिंदगी में कभी पिस्टल चलाए ही ना और उसका काम चलता रहे, या वो अच्छा जो जरा सी बात पे पिस्टल निकाल ले। तो इसलिए रियल पावर वो होती है जिसमें आप बिना उसको एक्सरसाइज किए अगला आपकी भाषा में सरेंडर कर जाए या आपका कहना मान ले। आप मुस्कुराहट दीजिए, मेरा ऑफिस सेकंड फ्लोर पर था और हर एक ऑफिसर के बाहर पीओन बैठे होते थे, तो मैं सोचता था इन बेचारों को और तो कुछ नहीं, तो जब मैं जाता था मैं मन में धार लेता था हर एक को मुस्कुरा के देखना, और मैं देखता था उससे मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं कौन है, लेकिन जब मैं उनको मुस्कुरा के देख जलता था तो उनके अंदर कोई मुस्कुराहट आ जाती थी कि साहब मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। ये तो मेरा अपना अनुभव है।
बहुत सुंदर भाई साहब, वेरी ब्यूटीफुल। कितना इजी एंड अपीलिंग और दिल को छूने वाले। अगर हम अपने जूनियर से अपने लेवल का कर रहे हैं तो फिर वही सीनियर हो जाता था, वही मेरे पद पे आ जाता था। तो थोड़ी सी सहानुभूति स्नेह की शक्ति को। भाई साहब ये उत्तर सुनते सुनते मेरे मन में एक प्रश्न आया और सभा में से भी मुझसे पूछा गया था। जनरली यहाँ पर ये बताया जा रहा है और ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि हमको अच्छा बनना है, ठीक है ना, क्रोध नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, आवेश में नहीं आना है, ईगो नहीं रखना है, ठीक है, यहां तक बात ठीक लगती है। लेकिन हम अच्छे अगर हो जाएं तो ऐसा प्रश्न पूछा गया फिर दुनिया हमको जीने नहीं देगी, लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे, फिर वो हमारा जो अथॉरिटी है उस पावर को भी वो मानेंगे नहीं। तो क्या हम करें ऐसी अवस्था में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें वो ठीक से फिर ऑपरेट करने नहीं देंगे, सो व्हाट शुड वी डू?
देखिए ये एप्रीहेंशन उस व्यक्ति में है जो हेजिटेट कर रहा है अच्छा बनने के लिए। अगर उसने अच्छा बन के देखा होता तो शायद ये प्रश्न नहीं उठता। एक कहानी सुनाते हैं, किसी ने सूर्य को कहा कि अंधेरा तुम्हारे लिए बहुत र्यूमर फैलाता है, बहुत बातें करता है। तो उसने कहा अच्छा, तो क्या अंधेरे को मेरे सामने लाओ, मैं उससे बात करता हूं। तो अंधेरा उसके सामने आ ही नहीं सकता तो बात क्या करेगा। इसी प्रकार से जब हमने अच्छे बनने का टेस्ट ही नहीं किया, हम ये सोच रहे हैं कि शायद अच्छा बनने में दुनिया प्रॉब्लम करेगी, तो रोशनी पावरफुल होती है या अंधेरा पावरफुल होता है, ना अच्छा तो अंधकार है, तो सारी दुनिया क्योंकि अंधकार में वो हेजिटेट करती है, कहीं मैं रोशनी में आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप करके देखें, और ना सही आप ब्रह्मा कुमारी में जाके देख ले, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे सारे 99.5% लोग इसी दुनिया में रहते हैं, और अच्छे बन के चलते हैं। तो अच्छे को तो लोग ढूंढ रहे हैं, भगवान ढूंढ रहा है कि थोड़े से अच्छे लोग बन जाए तो मैं दुनिया चेंज कर दूं, अगली दुनिया में आएगा कौन। इसलिए अच्छा ही होता है। और जब हम कहते हैं अच्छा और ये कह रहे हैं दुनिया हमको जीने नहीं देगी, तो कौन सी दुनिया? बुरे लोगों की दुनिया ना। तो बुरे, ये ठीक है कि जैसा माहौल, जैसा टाइम होता है वो पावरफुल होता है। यानी मान लीजिए कि आप दुबई में हैं, हॉट क्लाइमेट में हैं, वहां आपको गुलाब उगाना है, दुबई में गार्डन है आपको पता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है ताकि आप उसमें पनप सकें। तो यू हैव टू कीप एलूफ इन सर्टेन मैटर्स, आपका ऊपर खराब का प्रभाव ना आए नंबर वन, फिर आपका प्रभाव उस पर पड़ जाए नंबर टू। तो पहली बात तो यह है कि मेरे ऊपर उसका प्रभाव ना आए। इसलिए आप जानते हैं आध्यात्मिकता में लोटस का सिंबल दिया गया है कि जड़ें कीचड़ में हैं बट इट इज अनअफेक्टेड। हम लोग सारी दुनिया में घूमते हैं लेकिन हम क्योंकि अपने एक प्रोटेक्टिव हमने बनाया हुआ है तो वी रिमेन अनअफेक्टेड। नंबर टू, हाउ मच वी आर एबल टू अफेक्ट देम, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपनी स्पिरिचुअल, और इसमें कोई बोलने से किसी का आर्गुमेंट करने से कुछ नहीं होता, अपनी स्पिरिचुअल पावर से आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअल गिरावट से ऑटोमेटिकली दुनिया गिरती जा रही है, ऐसे ही स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट से दुनिया आप पे इम्प्रूव हो जाएगी, आपके लिए तो पक्का हो जाएगी। इस दुनिया में रहकर इसके सारे नियमों को पालन करके, 140 देशों के अलग अलग लॉ हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, उन सबको पालन करके अगर ब्रह्मा कुमारी ये साबित कर सकती है कि आप कंफर्टेबल रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं, कंटेंटेड रह सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए तो आपको यहां बुलाया। आपने आज हम क्लास में सुना था कि नेवी के कोई ऑफिसर हैं, अच्छा अब वो भी तो आपके आपकी सर्विस से है ना, अगर वो इसमें रह करके खुश फील कर रहे हैं तो हम तो बाहर कहेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो आपकी सर्विसेज के हैं। इससे पहले रावत साहब होते थे आर्मी के, वो भी इसमें चलते थे, उनका बेटा जिसका एक्सीडेंट वो भी इसमें चलता था, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? डेफिनेटली सच्चा रास्ता इजी होता है। अगर आपको सीधा रास्ता मिले वो इजी होता है या ऐसे जिग जैग होता है? लेकिन क्योंकि हमें सस्ता रास्ता मिला ही नहीं है, हम जिग जैग से ही चलते आए हैं, तो हम समझते हैं यही एक रास्ता, ऐसा नहीं है।
भाई साहब, आपने आध्यात्मिक शब्द का यूज किया, स्पिरिचुअल पावर्स का यूज किया, आपके आध्यात्मिक अनुभव के आधार से हम एक और बार थोड़ा स्पष्टता चाहेंगे, आध्यात्मिकता है क्या चीज? क्योंकि डे वन से हमें कहा जा रहा है आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता, आपके रिच अनुभव से हम थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहते हैं।
आध्यात्मिकता चीज क्या है
जी?
ये चीज है क्या ये कोई आध्यात्मिकता? चलो कुछ नाम तो देना ही है। अच्छा, ये सिंपल चीज है, इन्होंने चीज कहा तो मैं भी चीज कह रहा हूं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं, ये तो ठीक है। हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक ह्यूमन और एक बीइंग। ह्यूमन ये बॉडी है, इसको तो हम देख ही रहे हैं, बीइंग जरा दिखता नहीं है लेकिन इसके अंदर है वो। तो जो बीइंग है उसको सेपरेट जानना, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी गलतफहमी हमें ये है, ये बॉडी हमको बड़ा चीट करती है, बाहर से दिखती है ना, तो आजकल दिखावा बहुत है, हर दिखने वाली चीज हर अट्रैक्ट करती है, कंटेंट घटता जाता है। तो ये कहती है देखो मुझे अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, मेरा ध्यान रखो, तो मैं ही तुम्हारी लाइफ हूं। हम सचमुच ऐसा ही समझते हैं कि ग्रेप्स खिलाओ, एप्पल खिलाओ, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, मेरी लाइफ ये है। ऐसा नहीं, इसके अंदर जो बीइंग है वो लाइफ है। तो हमने क्योंकि समझा ही नहीं है कि बीइंग को एम्पावर करना है, तो हम इसी को बेचारे को एम्पावर करते रहते हैं। ये करता कुछ नहीं है, धोखा देता है आपको, अभी भी धोखा दे रहा है और किसी घड़ी भी धोखा दे सकता है। आप देख सकते हैं आजकल के जमाने में कोई भी व्यक्ति किसी भी घड़ी ऑफ हो सकता है। ये भी श्योर नहीं है क्या किसी चीज की ड्यूरेबल लाइफ होती है। हर चीज की, हर प्रोडक्ट की एक ड्यूरेबल लाइफ होती है, यहां तो ये भी भरोसा नहीं। जन्म लेते मर जाए, बीच में मर जाए, कहीं फौज में लड़ते मरना तो और बात है, बिना लड़ाई मर जाए, किसी वक्त भी मर जाए। अब बताइए, ऐसी अनरिलायबल चीज वो आपको धोखा देके कह रही है मैं तुम्हारी जान हूं। अगर आत्मा उसके अंदर ना हो तो पुतला बढ़ भी नहीं सकता। ये बढ़ता भी इसलिए कि अंदर बीइंग है। इतना धोखा है। हम समझते हैं अच्छा, एक व्यक्ति अपने नॉर्मल साइज तक डेवलप हो गया, उसके बाद वो एक मिलीमीटर भी ना बढ़ सकता है ना कुछ हो सकता है। कितना धोखा है कि हम अच्छा खाना, क्या आपका साइज बढ़ता है? कई कहते हैं जी ये आदमी बहुत बड़ा है, अगर बड़ा आदमी है तो क्या उसकी उम्र बढ़ जाती है क्या? नहीं। तो ये आध्यात्मिकता ये कहती है कि पावर बिहाइंड दिस बॉडी, उसको हमने इम्प्रूव करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द सोल। आपको खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, किसमें है? ये तो मीडियम है जिसके थ्रू उसका फीलिंग आता है। अच्छा, आपने गुस्सा ही करना है, उसके लिए भी गुस्सा सोल ही करती है। आंखें लाल होती हैं, अंदर सोल है। तो ये बात अगर कोई समझ जाए कि एवरीथिंग, ये खास नोट करने की बात है भाई साहब, पता नहीं हमारे प्रश्न के उत्तर में है या नहीं। Everything that a human being needs, in fact, is non-physical, non-material. आप एक चीज मुझे बताइए जिसका बॉडी से संबंध हो। यहां बोर्ड रख के लिख लीजिए, हम आपसे पूछें हर एक से, अच्छा आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए, आपका क्या उत्तर होगा? इन वन वर्ड, शांति ना? शांति फिजिकल और मेटीरियल है या एक अनुभूति है? अच्छा, दूसरा नंबर क्या कहेंगे? प्यार चाहिए, वो फिजिकल है, मेटीरियल है या अनुभूति है? तीसरा कहेंगे मुझे संतोष चाहिए, फिजिकल है? तो आप देखेंगे क्योंकि आत्मा ही नॉन फिजिकल है, उसकी रिक्वायरमेंट भी तो वैसी होगी। ये ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा फंडामेंटल ट्रूथ है जिसके आधार पर हम लोग इसमें जीते हैं। इसीलिए आपको जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ भी नहीं है। हवा पानी चाहिए सिर्फ व्यक्ति को, बाकी थोड़ा सा शरीर चलने के लिए। आज हमने कितने चार्ट बना रखे हैं, डाइट चार्ट, ये चार्ट, वो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप सोल को इम्प्रूव कर लेंगे, अब गांधी जी पतले दुबले आदमी थे, जरूरी नहीं कि वो बहुत खाना खाते थे, बल्कि फास्टिंग करते थे। आप फास्टिंग करेंगे, आप देखेंगे आप एक्टिव हो जाएंगे। आज जितने लोग ओवर फीडिंग से डाई करते हैं, स्टार्वेशन से नहीं करते। ये एक फंड आध्यात्मिकता में उस चीज को जो हमारी लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, वो कैसे डिटीरियरेट होती है उसको जानना, और कैसे स्ट्रेंथन होती है उसको जानना, यही विद्या यहां सिखाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे, घूमकर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति यहां होगा, चाहे वो गार्डनर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ड्राइवर हो, किचन में खाना बनाने वाला हो, हर एक कंटेंटेड है। ऐसा अच्छा फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वी हैव ऑल ऑफ अस हैव गॉट समथिंग टू स्पेयर, उल्टा ये है। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे लंबा कर दिया।
नहीं नहीं भाई साहब, हम तो और सुनने की इच्छा रखते थे। भाई साहब, आपने गांधी जी का जिक्र किया, और जब गांधी जी हमारे स्मृति पटल पर आता है तो वी थिंक ऑफ हिम एज द फादर ऑफ द नेशन, अ लीडर। प्रैक्टिकल जीवन में लीडरशिप और आध्यात्म के दृष्टिकोण से लीडरशिप, इसमें कुछ अंतर है? क्योंकि आप साकार ब्रह्मा बाबा के साथ भी रहे हैं, उसके बाद उनके अव्यक्त होने के बाद जो प्रकाशमणि दादी हैं ब्रह्मा कुमारी, इसको बहुत लंबे समय तक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, तो आपका जो अनुभव है उसके आधार से हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहेंगे इन द ट्रू सेंस, व्हाट एग्जैक्टली लीडरशिप क्या है, या एक इफेक्टिव लीडर क्या हो सकता है, या कैसे हम बन सकते हैं?
देखिए जी, ऐसा है कि ये लीडरशिप हर व्यक्ति अपने स्थान पर एक लीडर है, अर्थात जो उसको रिसोर्स मिला हुआ है अगर उसको वो प्रॉपरली यूज करता है, उसमें से वेस्टेज हटा देता है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है और अपने आसपास वालों को भी वो सिखाता है, दैट पर्सन इज ए लीडर। अगर एक लीडर हो तो कितने लोगों को गाइड कर सकता है, जो उसके सामने हैं, जो सामने नहीं भी हैं, है ना। अपने गांधी का नाम लिया तो गांधी जी को मैंने तो देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं उसको हमने देखा है। अब एक एग्जांपल देता हूं, गांधी जी ने कहा था जब इंडिया फ्री होगा तो भारत में प्रोहिबिशन हो जाएगी, शराबबंदी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ही फेल्ट कि ये एक चीज ऐसी है, ये ब्रिटिश ने हमारे देश में लाई है, लोग मिलिट्री वालों को छोड़ दें, लोग जो हैं, जो पापी लोग हैं वो इसलिए शराब पीते हैं कि मैं भूल जाऊं कि मैं पाप करता हूं, ताकि जैसे होता है ना गम को, गरीब इसलिए पीते हैं शराब के वो दुखी हैं। लेकिन हम जानते हैं एक चीज है माइंड कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल करने की। तो गांधी जी को हमने कितना फॉलो किया कि आज उसी भारत में ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और वो भी हम जानते हैं माउंट आबू गुजरात के पास है, कितने लोग गुजरात से माउंट आबू में आके शराब पीते हैं और कितनी इलिसिट जरा महंगे भाव में शराब बिकती है। दूसरा बिहार है, उसने परसों डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको बंद करने वाले हैं, हिंदुस्तान साफ, और मिजोरम नागालैंड है। तो आप सोचिए कि जिस देश में हम रेवेन्यू कमाने के लिए बिना किसी सेंस के उसको नहीं रोक सके, तो हम क्या गांधी जी की लीडरशिप को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का भाव ये है, ब्रॉडली स्पीकिंग लीडर मींस कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन, मान लो मैं घर का हेड ऑफ फैमिली हूं, आई बिकम ए लीडर, मैं ग्रैंडफादर बन जाऊंगा, आई विल बिकम लीडर ऑफ माय होल फैमिली, इस तरह से होता है। आपके किसी जगह भी कोई भी है तो एक करवाने वाला चाहिए, सुपरवाइजर एक जगह वो लीडर हो जाता है, कोई किसी हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई चलवाने वाला होता है और उसकी एफिशिएंसी सारे डिपार्टमेंट की उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने पूछा लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, तो ये नेचुरल है कि जिस तरह के माहौल में आप होंगे उसका लीडर वैसा ही चाहिए। अगर कोई स्मगलर है तो स्मगलर का लीडर कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड लीडरशिप क्वालिटी तो उस पर लागू नहीं होगी। वो इतने एक दूसरे पर विश्वास करते हैं कि वो कहता है ये हीरे का पैकेट ले लो, वो कहता है पैसा दे दिए, गिनते नहीं है, लेकिन वो पक्का होता है कि उतना होता है, लेकिन है तो स्मगलर। इसी प्रकार से कोई पुलिस का चीफ होगा उसकी और तोला की क्वालिटी होगी, जो चोरों का चीफ होगा वो भी लीडर होगा। कहने का भाव है, पहली बात तो यह है। नंबर टू, अपनी सिचुएशन के मुताबिक ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने किसी को लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं दी। क्या करते थे वो हमारी बड़ी दादियां बताती थी कि हम बैठती, बाबा किसी से जो भी डील करते थे हम बैठती थी, हम देखती रहती थी बाबा किसको कैसे डील करता। तो उसी प्रकार से जब उनकी टर्न आई उन्होंने भी वैसे ही डील करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से है तो संस्कार पिकअप होता है। किसी भी फैमिली में आप देखेंगे संस्कार पिकअप होता है। अब हम ब्रह्मा कुमारी में आ गए तो हमारे को यहाँ के संस्कार समझ में आ गए। ये है। अब बाकी लीडरशिप की आप पूछेंगे, एक व्यक्ति था कहता था बहुत खतरे की बात थी, मैंने 20 लोगों को अकेले ही भगा दिया है जी। लोग समझे कि बहुत बड़ा महान ब्रेव आदमी होगा। हुआ क्या था कि खतरे की बात थी, वो भागा और 20 भी भाग गए उसके पीछे। अब बताओ, अच्छा ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए हाँ, कोई भी लीडर कहीं भी होगा आप क्या पाएंगे कि जो उसके अंदर, इस हर लीडर में कुछ पॉइंट प्लस पॉइंट होता है, बाकियों से एक्स्ट्रा होता है। लेकिन बाकी क्या है, मान लीजिए एक लीडर है उसके अंदर ईगो है, ठीक है, वो अपने देश को तबाह करवा देगा, सारा देश समाप्त हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन उसका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। इतिहास भरा पड़ा। अच्छा, कोई ऐसा लीडर है जिसके अंदर लोभ है, वो बाकी सब काम करेगा पर लोभ का इंस्टिंक्ट उसका काम करेगा। अगर आप परफेक्ट लीडर की एग्जांपल चाहते हैं तो देवी देवताओं की मूर्ति सामने ले आए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्ति सामने ले आए जो मंदिरों में है, वो भी महाराजन महारानी थे, दोनों सिंहासन पर बैठते थे, महाराजा भी महारानी भी, जेंडर इक्वालिटी था, उनके अंदर आध्यात्मिक पावर था, इसलिए वो कोई मिनिस्टर नहीं रखते थे। और उसका दिखाया जाता है कि उनके सिर के पीछे प्रकाश का वो है, क्राउन है, और ऊपर उनके महाराजा का क्राउन है। उनके समय में जुडिशियल पावर अलग नहीं थी, रिलीजियस पावर राज करते थे। कितना समय किया, अपनी सारी लाइफ किया, फिर उनकी कितनी 8 पीढ़ियां चलती हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए दूसरे राजा आए तो क्या हुआ, वो क्राउन खत्म हो गया आध्यात्मिकता का, तो महारानी आउट हो गई, महाराजा सिंहासन पर। फिर उन्होंने कुछ वजीर रखने शुरू किए, एडवाइजर। अब आप जैसे मैं कह रहा था कि जूनियर व्यक्ति सीनियर को एडवाइज करेगा तो उसकी एडवाइज कैसी होगी, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर छोड़ के चलवाने लगे जूनियर से, किसी ने उनको ही जेल में डाल दिया, किसी ने कुछ किया, लॉन्ग स्टोरी। अच्छा, और चलते जाइए, आज लीडरशिप कैसी है, आपको 5 ईयर टर्म है सिर्फ, ओनली, एंड यू हैव गॉट ए होल लिस्ट ऑफ मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर्स एंड सो ऑन। मोर ओवर आप ऑपोजिशन को अपने सामने बैठाते हैं अपने घर में कि तुम बैठ के मेरी हर वक्त जो मैं कहूं, तो कहां लीडरशिप रही। तो बेसिकली व्हाट वाज द कॉज, आध्यात्मिक शक्ति थी। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति मीन्स के नेगेटिव पावर आपके अंदर नहीं आएंगी, और जितनी नहीं आएंगी उतनी आपकी लीडरशिप प्योर होगी, इंटेलेक्ट प्योर होगी, थिंकिंग फार साइटेड होगी, कभी शॉर्ट साइटेड, आप कहते हैं ना कि विन बैटल देन लूज वार, कि छोटी छोटी बात कर ली, बड़ी बड़ी रेस में तो हार गए, इस प्रकार की बात। इट्स ए सटल थिंग कि लीडर का माइंड प्योर होगा तो उसके सारे डिसीजन प्योर होंगे, जिस हद तक और जिस डायमेंशन में इम्प्योरिटी होगी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड।
बहुत सुंदर भाई साहब।
अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो उस वक्त 10 बजे ऑफिस लगता था, तो नया व्यक्ति था मैं, फर्स्ट टाइम आई रीच देयर 10 o'clock, तो वहां कोई ऑफिस में आदमी नहीं था, डस्टिंग हो रही थी। मैंने कहा भाई 10 बज गए, और अभी कहता अभी अब नए नए आए। आफ्टर लंच में 2 बजे पहुंच गया तो कोई नहीं था, मैंने कहा 2 तो बज गए, कहते आप नए नए आए, आप समझ सकते हैं।
भाई साहब, आपने ब्रह्मा बाबा का कहा और दादियों के बारे में कहा, आपके स्मृति में ऐसा कोई एक अनुभव या उनके साथ कैसा कोई एक्सपीरियंस याद आता है जिससे बहुत स्पष्ट होता है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी वॉज एट अ डिफरेंट डायमेंशन, एक अलग उनकी अंडरस्टैंडिंग थी लीडरशिप की?
देखिए, बहुत सारी घटनाएं हैं, ये रात तक बैठने को तैयार हो तो मैं बोल सकता हूं, बाकी एक सुना देता हूं।
बिल्कुल
ठीक। ये हमारी दीदी मनमोहिनी जी की है कि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी ने एक रेंटेड हाउस लिया हुआ था न्यू दिल्ली में, सफदरजंग एन्क्लेव में उन दिनों में। तो उसका मालिक मकान आया, मैं वहीं था, मैं नया नया अपना जॉब छोड़ के उस दिल्ली में आया था। तो उस मालिक मकान ने कहा बड़ी दीदी जी को कि हमारा मकान हमें चाहिए, खाली कर दीजिए। तो मुझे दीदी जी ने कहा कि भाई इसका मकान खाली करना है, और उसको कहा कि जल्दी से जल्दी हम खाली कर देंगे। वो अपने पत्नी से आया था, हाथ जोड़ के नमस्कार थैंक यू करता हुआ चले गया। तो मुझे उस मकान के बारे में पता था। मैंने कहा दीदी जी, इस आदमी के दो मकान हैं और ये झूठ बोल रहा है, इसको मकान की अपने लिए जरूरत है, मैं जॉब छोड़ रहा हूं आदि आदि करके बोला है। तो आपने इसको कह दिया कि खाली कर देंगे, वहां तो मकान नया मिलता ही नहीं, और उस समय इस किराए में था, आजकल तो हमारे स्टूडेंट कहां जाएंगे। तो दीदी ने मुझे कहा देखो मकान तो इसका है ना, और इसने हमें दिया, जितनी देर दिया हमने यूज किया। तो मैंने कहा यहां तो लोग मकान खाली करते ही नहीं है। वो कहते जब होगा देंगे, कोई पैसा लेके करता है कि नए मकान का किराया दो। उन्होंने कहा कि देखो हम उसका मकान रोकेंगे, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा दीदी पर वो जाए, हमारे स्टूडेंट कहां जाएंगे। उन्होंने कहा हमने कहा है ना कि जब तक नहीं मिलता खाली तुम कोशिश करो। तो आप हैरान होंगे, फर्स्ट हाउस के लिए जो हमने दिल्ली डीडीए कहते हैं उसको, उससे जमीन ली गवर्नमेंट से, उसी वजह से ली कि उसने कहा था वो मकान खाली कर दो, दीदी ने कहा कर दिया। उसके बाद उस वहां पर अपना स्थान हमारा बन गया। और कोई होता तो कहता कि ठीक है इसे थोड़ा पैसा ले लो या इसका अभी खाली नहीं करो। ये मैंने देखा प्रिंसिपल अप्रोच से। मैं सोच रहा था कि बहुत हम गलती कर रहे हैं, हमें मकान मिलेगा नहीं, लेकिन मिल भी गया और वो व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया।
भाई साहब, आपने अपने उत्तर में देवी देवताओं का वर्णन किया कि वो किस प्रकार के लीडर्स रहे हैं। आज जब हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हैं तो हमको परमात्मा का परिचय में ये बताया गया कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, शिव उनका नाम है, और हमको ऐसा कोई बात ऐसा कुछ लगा भी नहीं, हम स्वीकार भी हमने कर लिया। लेकिन अब तक हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, श्री राम की, कृष्ण की, हनुमान की, तो अब अगर हम शिव को माने तो हमें थोड़ा सा एक डर है कहीं वो श्री कृष्ण कुछ हमारे साथ
नाराज ना हो जाए।
हाँ जी, नाराज ना हो जाए तो हम क्या करें, किस इस दुविधा में हैं। और यहाँ भाई बहन इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, लेकिन हमने तो आज तक बहुत देवी देव, आज भी हम मंदिर जाते हैं, उपवास करते हैं, तो थोड़ा सा मन में एक दुविधा है, आप उसमें थोड़ा सा हमें स्पष्टता लेकर आए।
देखिए, ये देवता तो नाराज होते नहीं, पहली बात है ना, जो नाराज हो जाए वो देवता कहेगा। हम कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, तो प्रभु जी कहते हैं अगर मैं अवगुण चित धरने लग जाऊं तो मैं प्रभु जी कैसे होऊंगा। लेकिन अगर प्रभु जी कह दे अच्छा बेटा तू भी किसी के अवगुण चितना धर, तो कहेंगे नहीं जी हम तो धरेंगे, आप नहीं धरना, ये हमारा हाल है। अच्छा, देवताओं को हम कितना खुश रखते हैं, एक के पास जाएंगे, कुछ प्रेयर करेंगे, फिर डाउट होगा, पता नहीं ये पूरी करे न करे, दूसरे के पास चले जाएंगे। जब तक वो तैयार हो आपकी हेल्प करने को, तो हमारा तो ये संशयात्मक बुद्धि है। बाकी रहा ये कि भक्ति में ये सिखाया जाता है कि जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, किसी गुरु को या किसी को, अगर तुमने उसको छोड़ा तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा। ये हमारे साथ हुआ है। हमारी माता जी राधा स्वामी की फॉलोअर थी और उनके घर, हमारे घर में हर थर्सडे को राधा स्वामी का सत्संग लगता। मेरे पिताजी आर्य समाज जी थे, वो गुरु वगैरह को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने माता जी को फ्रीडम दे रखी थी, आप अपना करो। अब जब मैंने आपको पहले बताया, जब मेरी समझ में आ गया कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ठीक है, उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं उनको 7 दिन तो तंग करता रहा, मैं वकालत पढ़ता था, जो वो कहते थे मैं उल्टा कर देता था। वो कहते थे मैं आत्मा मेरा शरीर, मैं कहता था नहीं, मैं शरीर मेरी आत्मा। लेकिन एनी हाउ जब वो मान गए तो मेरी माता जी को भी इस ज्ञान में आना था। तो हमारे पिताजी ने क्या किया कि एक ब्रह्मा कुमारी जो बहुत अच्छा हारमोनियम और भजन गाती थी, एक कहा माता जी को कि थर्सडे को इस बार एक ब्रह्मा कुमारी को लाएंगे, आपकी लेडी सत्संग में वो करेगी। तो लेडीज क्यूरियस भी थी कि कैसी होती है ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने उनको इनवाइट कर लिया। तो उसने बहुत अच्छा भजन गाया, तो वो देखने लगी, अच्छा सुना हुआ था ब्रह्मा कुमारी, अच्छा ऐसी होती है, इसकी तो ठीक लगती है। अच्छा, फिर वो फ्रीक्वेंटली हर महीने 1-2 बारी बुलाते रहे, तो उनका अफिनिटी हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, उस बहन ने कहा मेरी मदर को, मैं तो एक हूँ, आप हमारे सेंटर में चलो, 6 ब्रह्मा कुमारियां हैं, आप मिलो तो सही। वो चली गई, स्लोली मेरी मदर ब्रह्मा कुमारी की तरफ इंक्लाइंड हो गई। तो राधा स्वामी माता ने उसको कहा, तुमने गुरु को छोड़ा है, देखो तुमको बहुत बड़ा श्राप लगेगा। सचमुच क्या हुआ, ड्रामा के अनुसार मेरे छोटे ब्रदर की डेथ हो गई 3 महीने बाद। अब उन्होंने कहना शुरू किया, देखा तुमने गुरु छोड़ा था ना, ये तेरा हाल हुआ। लेकिन मेरी मदर काफी हद तक ज्ञान को समझ चुकी थी, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कि तो उनका डेथ होना ही था ना, कोई गुरु तो ऐसे नहीं कहता मुझे छोड़ दो डेथ हो जाए। तो इस प्रकार की भावना भक्ति में होती है। और वैसे भी कोई व्यक्ति इतने बड़े फिजिकल देवता को याद करता हो, उसको आप कहेंगे ज्योति बिंदु को याद कर, उसमें तो उसका मन टिक जाता है, उसमें नहीं टिकता तो डिफिकल्टी फील करता है। लेकिन फैक्ट क्या है कि सत्य क्या है, आप सारे भारत में देख लीजिए, अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लीजिए कि परमात्मा किसको मानते हैं। आज भी भारतवासी, ये ब्रह्मा कुमारी की नई इन्वेंशन नहीं है, केवल और केवल शिव को परमात्मा ने नमः कह के पूजन करते हैं। सारा भारत में ढूंढ लीजिए, शिव परमात्मा ने नमः, बाकी सबको देवाय नमः, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, श्री राम तो है ही देवता, श्री कृष्ण ठीक है। अब देवताओं को रचने वाला परमात्मा है, अब शिव को भी वो शंकर जी से मिला देते हैं। यहाँ पर ये समझाया जाता है, शंकर को भी हम महादेवी कहते हैं, देवाय नमः, परमात्माय नमः, शिव नमो शिवाय और ओम नमो शिवाय। कईयों को ये भी शक पड़ता है कि शायद ओम भगवान है। अब परमात्मा परमात्मा को तो नमः नहीं करेगा, ओम नमो शिवाय मीन्स कि शिव को नमः करने वाला आत्मा है। वो भी डिटेल छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि मैं कौन हूं। जब तक मैं अपने आप को बॉडी मानता हूं तो मुझे गॉड भी बॉडी ली चाहिए, क्योंकि बॉडी से बॉडी का संबंध होना है। जब मुझे ये पता लग जाता है कि मैं भी इसके अंदर एक आत्मा हूं, हम यहां बिंदी लगाती है हमारी भारत की माताएं, हम तिलक लगाते हैं, स्मृति का चिन्ह हमारे भारत में ही है, गीता कहती है पहले चैप्टर में कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुमने धारण किया है। अब मेरी एज 90 साल की है, तो 91 साल पहले तो मैं इस बॉडी में नहीं था और कुछ दिन बाद नहीं रहूंगा, तो ये मैं थोड़ी हो सकता हूँ। तो सिंपल है, तो धीरे धीरे इसमें टाइम तो लगता है कि मैं आत्मा हूँ। पहले तो मैं अपने आप को आत्मा समझू बॉडी में, फिर मैं समझूंगा कि जिस देवता को मैं याद कर रहा हूँ उसके अंदर भी तो आत्मा है। तो आत्मा को याद करेगी ना, आत्मा ने परमात्मा को याद करना या शरीर को? शरीर तो कृष्ण जी का भी नहीं है आज, है क्या? राम जी का भी नहीं है। तो मैं किसी के शरीर को याद करूं, वो जब तक उसकी आत्मा को, मेरे ग्रैंडफादर का फोटो मेरे घर में लगा हुआ देखता हूं तो मैं शरीर तो हूं, पर मुझे उनका सारी जो पता है उससे याद करता हूं। तो टाइम लगता है, लेकिन सत्य ये है कि जिस चीज को गीता में कहा हुआ है कि मैं जो हूं, जिस रूप में हूं, जितना हूं, उस रूप में मुझे याद करोगे तब आपका कनेक्शन जुड़ेगा। आप टेलीफोन में देख लीजिए, एक नंबर चेंज हो जाए आपका नहीं मिल सकता। आप कहेंगे फलाना, वो कहेगा फायर ब्रिगेड, आप कहेंगे फलाना, वो कहेगा फायर ब्रिगेड, तो फिर क्या होगा? लॉटरी निकलती है किसी की, 10 डिजिट होते हैं, 9 तक ठीक आ जाता है तो उसका दिल धड़कने लग जाता है, जब 10वां चेंज हो जाता तो छुट्टी, ये मामला है।
भाई साहब, आप गीता का और शास्त्रों का विवरण दे रहे थे, तो इस बार का ब्रह्मा कुमारीज का जो ईयरली जो हमारा जो थीम है वो है दया, करुणा, कंपैशन वाला। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि अगर आपको इस दुनिया में रहकर अच्छी रीति से कार्य करना है तो साम, दाम, दंड, भेद, ये सब भी चलता है। तो ये थोड़ा फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग है। और हमको यहाँ कहा बिल्कुल आपको गुस्सा नहीं करना है, सदा शांत रहना है, सदा प्रेम में रहना है, और वहां तो ये बातें हैं।
आप आर्मी वालों को दया करना सिखाएंगे? मेरी मदर मथुरा में रहती थी, तो हमने एक बार सोचा मथुरा कैंट में आर्मी है वहां एक प्रोग्राम करें। तो मैं उस वहां के जो बड़े थे उनके पास गया, तो मैंने कहा हम ब्रह्मा कुमारी से हमने प्रोग्राम करना है। वो बोले हम तो नहीं भेजेंगे, आप तो सिखाओगे दया करो, करुणा करो, तो हमारे आर्मी वाले किस काम का ये गया?
भाई साहब, आपने अगला प्रश्न को पहले ही ले लिया।
ओहो, अच्छा, सॉरी। हाँ, तो भाव ये है कि ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है चीज का। अब आप देखिए दया और करुणा, ये ह्यूमन नेचर है, व्यक्ति के अंदर ये बेसिक क्वालिटी है आत्मा की, नहीं तो इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं रहेगा। इंसान के अंदर जजमेंट है, उसके अंदर मन में भाव जागता है। आप किसी व्यक्ति को मान लो सड़क पे देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ है और वो अधमरा सा हो रहा है, तो आपके अंदर दया नहीं आएगी कि मैं कार रोककर इसको कार में डालकर अस्पताल ले जाऊं? आएगी जरूर। अगर नहीं करेंगे आपका सारा दिन दिल खराब रहेगा कि मैंने गलती की है, मेरे साथ होता तो क्या होता, ये स्वाभाविक है। लेकिन ओवर द पीरियड हमने धीरे धीरे अपने दया और करुणा को स्प्रेस किया है, करते 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 अब ये हाल हो गया है कि जितना जितना हमने स्प्रेस किया हुआ उसका हमें पता नहीं है, उसके आगे फिर भी हमारे अंदर दया और करुणा। आप देखेंगे जैसे आईज होती है ना, तो जितना आईज का लॉस हो गया, जिसने चश्मा नहीं लगाया वो समझता मैं तो देख ही रहा हूं। जब कोई डॉक्टर कहता है कि देख भाई इतना तेरा फील्ड ब्लाइंड हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी चोरी करता है और उसने कभी डाका नहीं मारा, तो चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो क्या करेगा? मर्डर नहीं कर जेल में चला जाएगा, क्योंकि उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया। लेकिन कभी एक बारी वो मर्डर कर दे किसी का, तो फिर वो मर्डर करने में डरता नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए वो मर्डर करने में नहीं डरता, जैसे एक बूचर होता है वो जानवर को ऐसे काटता है जैसे हम गाजर काट रहे हैं, उसकी कॉन्शियस डेड हो जाती है। पहली बारी जब वो काटता है उसको फील होता है। किसी को कहो कि तूने मांस खाना मेरे सामने मुर्गा को काट के खा तो डर जाएगा, मेरे अपने मौसा जी मीट ईटर थे, एक दिन उन्होंने मुर्गा को काटा, वो छत से जाके ऐसे ऐसे टकराया और उनका तीन लड़कियां थी, एक नया लड़का जो थी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे पाप लगा। अपनी अपनी थिंकिंग है। अब आप देखिए कि कोई सचमुच मर्डरर बन गया, डाकू बन गया, इनडिस्क्रिमिनेटली वो क्राउड पे गोली चला रहा है, बीच में उसे अंकल खड़ा है, तो क्या कहेगा? अरे भाई देखना मेरे अंकल को बचा लेना, तो दया करना है ना थोड़ी बहुत अंकल के लिए। आज का लोग अंकल को भी मार देते हैं। तो हमारी कॉन्शियस स्लोली स्लोली स्प्रेस होती है। अदरवाइज अगर उससे सब सप्रेशन निकाल दो तो दया करना ह्यूमन गुण है। आप देखेंगे देवताओं का एक हाथ ऐसे होता है और एक हाथ ऐसे होता है, आशीर्वाद देते हैं और देते हैं। वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है। और उसका अपोजिट जो है, जब व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस हो जाता है तो उसके अंदर ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, एंगर और लस्ट आता है। ये सारी सारी चीजें दया करुणा के विरुद्ध है। कहा जाता है पाप मूल अभिमान और दया धर्म का मूल है। अब आप सोच लीजिए, आपने पाप करना है या दया करनी? जब कह दिया दया धर्म का मूल है, हम धर्म वाले बनना चाहते हैं या नाम रखेंगे धर्मानंद सेठ और काम करेंगे गड़बड़ का? आप सोच सकते हैं। और दया के साथ करुणा अटैच, हम गॉड को भी कहते हैं मर्सी। लीगल सिस्टम में है कि कोई कितना भी गुनाह कर दे तो प्रेसिडेंट को पावर ऑफ पार्डन होती है कि नहीं होती है? उसका ट्रैक देखकर इसके बाल बच्चे छोड़ देता है। तो भगवान को हम कहते हैं करुणा कर, तो हमें भी तो कुछ उसका हिस्सा, हम क्रिएशन ऑफ गॉड हैं। उस हिसाब से दया और करुणा ओरिजिनल क्वालिटीज हैं। बाकी ना ईगो वाला किसी से दया कर सकता है, अटैचमेंट वाला तो मोह का मतलब किसी का हक छीन के अपने वाले को देना, वो तो कर ही नहीं सकता। लोभ वाला तो कर ही नहीं सकता, आपके खाने में जहरीली चीजें मिला देगा लेकिन वो दया नहीं कर सकता। एंगर वाला तो क्या दया करेगा। और लस्ट वाला तो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। अब रोज पढ़ते हैं कि रेप किया फिर उसकी जान भी मार डाली, तो वो ऐसा है। हाँ जी
भाई साहब, आपने ईगो अटैचमेंट की बात की। कभी कभी जीवन में कार्य क्षेत्र में ऐसा होता है कि कोई बात या घटना घटती है, कोई ऐसा संदर्भ आता है, उस वक्त हमें ये पता नहीं चल पाता है जो मेरा चिंतन चल रहा है वो ईगो से ड्रिवन है या वो सेल्फ रिस्पेक्ट से ड्रिवन है, कि मैं सामने वाले को जवाब दूं थोड़ा सा तो वो ईगो के आधार से मैं जवाब दे रहा हूं या फिर मेरे को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार से भी जवाब दे सकता हूं। तो इसके अंतर क्या है, अगर मैं ईगो के साथ ऑपरेट कर रहा हूं या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ऑपरेट कर, इसमें डिफरेंस क्या है? क्या हमको चिन्ह पता चलेगा या हमको अंतर कैसे पता चलेगा कि आई एम नॉट ऑपरेटिंग और आई एम नॉट सेइंग और थिंकिंग आउट ऑफ ईगो बट इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट?
भाई जब तक अगर हम शब्दों की डेफिनेशन को नहीं जानेंगे। अब आप देखिए, विवेकानंद गए थे अमेरिका में तो उन्होंने क्या कहा। आजकल हम सेल्फ रिस्पेक्ट किसको गिनते हैं कि मेरे कितने स्टार हैं, मेरा स्टेटस क्या है, दूसरे को उस अनुसार मेरी इज्जत करनी चाहिए। अगर इस एंगल से सेल्फ रिस्पेक्ट गिनते हैं वो तो ईगो ही है छुपा हुआ, क्योंकि हम इंसान को इंसान नहीं देख रहे। आजकल तो बुरा हाल है, आपने मैरिज करानी हो, लाइफ पार्टनर ढूंढना हो तो अखबार में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वांटेड। जो आजकल के पेइंग प्रोफेशन है, आईटी एक्सपर्ट, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि, कहीं लिखा होता है वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपने पढ़ा है कभी? अब ये तो हमारा हाल है कि हम रिलेशनशिप लाइफ का जोड़ रहे हैं और मांग रहे हैं संसारी। अगर इसी को हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं कि हाई पर्सन है प्रोफाइल, वो ईगो ही है। अदरवाइज उसने विवेकानंद ने क्या कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए पर्सन, इन माई कंट्री करेक्टर मेक्स ए पर्सन। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स करेक्टर वाला आदमी। तो करेक्टर वाला आदमी आप देखेंगे दुनिया में भी, जो छोटी वृत्ति वाला आदमी होगा वो आपकी इज्जत उतारने में जरा देर नहीं करेगा। और करेक्टर वाला आदमी 100 बार सोचेगा कि मैं इसकी इज्जत को बचाऊं कैसे, उसकी भाषा सभ्य होगी, है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीनियर पर्सन और दूसरे। अब यूनियन लीडर की डिमांड राइट होती है, पर उसके बोलने का तरीका कैसा होता है जब वो जाता है, तो उससे लोगों की सिंपथी घट जाती है। कोर्ट में रोज झूठे विटनेस जाते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, माई बाप हजूर अन्नदाता, और जो सच्चा होता है ऐसे जाता है, तो जज को फील होता है इसमें ईगो है। देयरफॉर ह्यूमिलिटी, अगर किसी ईगो का उल्टा ह्यूमिलिटी, ठीक है, ग्रीड का उल्टा है कंटेंटमेंट, एंगर का उल्टा है मर्सी, सेक्स लस्ट का उल्टा है रूहानी दृष्टि, अगर ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो व्यक्ति को फील होगा और दूसरे का सम्मान करेगा, और अगर मेरे अंदर अपमानित की फीलिंग है, देखो इसने मुझे सैल्यूट नहीं किया, मैं देखूंगा इसको, तो वो फिर ईगो है।
भाई साहब, प्रोफेशनल लाइफ में कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, और कंपटीशन को फेस करते करते फिर तनाव भी आ जाता है, तो कैसे हम आगे भी बढ़ें, कंपीट भी करें, लेकिन फिर उसका दुष्परिणाम ना हो, हम तनाव में ना आए, तो कैसे हम कंपटीशन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं?
देखिए, इस दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन है। अगर यही सोच ले हम कि जब हमारा जन्म हुआ था तो किस कंपटीशन के आधार पर हुआ था, एक व्यक्ति स्लम एरिया में पैदा होता है, एक आदमी अच्छे घर में पैदा होता है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, एक राजा के घर पैदा होता है, तो आप सोचिए कि उस वक्त कौन सा कंपटीशन हुआ था जो हमारा जन्म हुआ। तो जब जन्म ही कंपटीशन से नहीं हुआ, मृत्यु भी कंपटीशन से नहीं होता, हम इस बात को क्यों भूलते हैं कि कर्मा फिलॉसफी ऑटोमेटिक ऑपरेट करती है। मैं अपने कर्म ठीक करता रहूंगा, ऑटोमेटिकली हमारे प्रारब्ध अच्छी होगी। आज की आप राष्ट्रपति को देख लीजिए, जो ब्रह्मा कुमारी है, अब वो कैसे राष्ट्रपति बन गई, तो उसकी क्वालिटीज हैं, तो क्वालिटी के आधार पर वो 3:30 बजे योग लगाती है, वेजिटेरियन है और असूलों का पालन करती है, फर्स्ट लेडी है जिसने वहां जाके मीट बंद करवा दिया, यद्यपि वो कॉस्मोपॉलिटन होता ऑफिस, बड़े बड़े राष्ट्रपति और देशों के आते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा का भी ऐसा ही था, वो ज्वेलर थे, लोग कहते थे राजाओं के पास जाते थे, लखीराज बाबू तुम्हारी पार्टी फीकी रही, अर्थात उसमें तुमने शराब नहीं सर्व, वो कहते थे तुम मुझे कागज के नोट देते हो, मैं तो तुम्हें हीरे देता हूं, मैं अपना असूल कैसे छोड़ूंगा। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी के घर जाता है तो उसके एटिकेट को पालन करता है, तो उसने एक बंदा कर सकता ना, यहाँ ब्रह्मा कुमारी इतने अंग्रेज हैं, आप समझते हैं, नेपाल में सारे लोग नॉन वेज हैं, लेकिन जितने बीके हैं वो वेज हैं, तो कैसे कर दिया। नेपाल एयरलाइंस में ऑप्शन ही नहीं है वेजिटेरियन का, वो तो हमारे देश के सभ्यता वाले हैं, तो कोई अपना असूल रखता है, कुदरत का नियम है, आप जिस असूल पे चलेंगे कुदरत आपको हेल्प करेगी। मिर्च के बीज को कुदरत कड़वापन देगी, गन्ने के बीज को मीठा देगी, तो हमें अपने कर्म ठीक करने, आपके लिए एटमोस्फियर नेचर आप ही प्रोवाइड करती है, नो कंपटीशन। आप बताइए, आप कलर ड्रेस पहनेंगे तो आपको कंपटीशन है, सफेद पहनोगे तो किस कौन कम्पीट करेगा आपसे, आप सादा रहोगे कौन कम्पीट करेगा आपसे, आप सच्चे रहोगे तो झूठ में हो सकता है, बहुत वैरायटियां हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।
बहुत सुंदर भाई साहब, वाइट में कोई कंपटीशन ही नहीं है, मेरा टेंशन दूर हो गया।
नहीं, आजकल है वो जाली वाली बुन लेते हैं। उससे आपको पता लग जाता है
भाई साहब। एक
आपने किसी व्यक्ति का लाइफस्टाइल जानो, बाहर जूते देख लीजिए सिर्फ, आपको पता लग जाएगा।
बिल्कुल करेक्ट, और इसीलिए शायद मंदिर में अपने लाइफस्टाइल को बाहर रखकर अंदर आइए, सब समान हो जाते हैं भाई साहब। एक
मंदिर में तो बड़ी प्रॉब्लम है, जूते पर भी ध्यान रखना पड़ता, मूर्ति पर भी।
भाई साहब, संस्था से संबंधित और इसके हिस्ट्री से संबंधित एक प्रश्न आया है कि ब्रह्मा कुमारी इसका फाउंडर कौन है पहला, और कई बार हमने यहाँ लोगों को बाबा शब्द का उच्चारण करते हुए देखा है, तो कौन है ये बाबा? नंबर टू, यहाँ पर हमको आत्मा, परमात्मा, निराकार के बारे में बताया गया, लेकिन कई जगह पर हमने लक्ष्मी नारायण का, लॉर्ड कृष्णा का और दादा लेखराज का फोटो देखा है, तो थोड़ा हमको समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा आप स्पष्ट करें।
देखो जी, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर देने में और प्रश्न पैदा हो जाए। एक जरा सी बात में कितना कुछ छिपा हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने आम खाने या पेड़ गिनने हैं? फाउंडर कोई भी हो है? अच्छा, है ना? मैं कह दूं ए है या बी है, है ना? हमारे ब्रह्मा बाबा लोगों को कहा करते थे कि वो पूछते इसको ब्रह्मा क्यों कहते हो, तो वो कहते थे तुमको कहना शुरू कर देते, इसमें क्या फर्क पड़ता है ना? क्योंकि मनुष्य को अपनी एंसेस्ट्री का पता नहीं होता जब तक एंसेस्टर ना बताए। किसी बच्चे से पूछो तेरे पिताजी का नाम, उसका पिताजी कौन है, पांचवी लेवल पे जाके गया मैं बाबा, ये भी एग्जांपल दिया करते थे
जी।
तो इसलिए आज जो इंस्टीट्यूशन की विशेषताएं हैं उसको जानकर एक दो धारण करेंगे, आपको एक भी अच्छी लग गई तो अच्छा लगेगा। अब इतने लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, निराकार, साकार, कृष्ण, राम, मैं तो फिर इनको बैठना पड़ेगा, एक रात बैठेंगे तो मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। मुझे इतना टाइम लगा सीखने को, तो ऐसा उत्तर मैं दूं जिससे और प्रश्न पैदा हो जाए, इससे ना देना अच्छा।
धन्यवाद। कहने का भाव ये है कि हमारा जो 7 डेज का कोर्स होता है उसमें ये सब बातें बहुत इजीली, बहुत क्लियरली वो स्पष्ट हो जाएंगी। कम समय में उसका विवरण देने में शायद, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, कुछ और फिर प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। भाई साहब
नहीं, अनुभूति करेंगे ना
जी।
हमने भी बहुत आर्गुमेंट किए थे, अब मेरे पिताजी ना होते इसमें तो मुझे कहते आप जाओ छुट्टी करो, हमारी जान छोड़ो, लेकिन एक दिन मुझे अनुभूति हो गई। उस दिन मैंने सोचा कि ब्रह्मा कुमारी ठीक कहती है, इनकी तरफ से सोचो। तो आप योग शिविर वगैरह करेंगे ना, अनुभूति जरा सी भी हो जाएगी तो आप समझेंगे, हम आगे अच्छी तरह समझें। आर्गुमेंट से बड़ा मुश्किल है
जी। भाई साहब एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है कि मन और आत्मा में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, प्लीज इलैबोरेट।
अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन है।
मतलब
इसका टेक्निक तो अभी तक पता नहीं लगा कि मन और
डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल एंड वेयर दे एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी।
बताओ, डिक्शनरी में देखेंगे दो नाम हैं तो दो का अर्थ होगा कि नहीं? माइंड का माइंड होगा, सोल का सोल होगा। अच्छा, अब कहाँ रहते हैं? पहले तो उसके लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है। मोटे रूप से मैं बता सकता हूँ कि लोग दो शब्द यूज करते हैं, एक है हार्ट, एक है माइंड, एक है ब्रेन, एक है इंटेलेक्ट, ठीक है? एक है दिमाग और बुद्धि और एक है दिल और मन। तो हार्ट इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, सब जानते हैं। ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, सब जानते हैं। माइंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी, इंटेलेक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। ये आत्मा की शक्तियां हैं, सुफूर्तियां हैं। आत्मा जब संकल्प करती है उसको कहते हैं माइंड। आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम मन है, इन शॉर्ट। आप जो कुछ भी संकल्प करते हैं वो माइंड है, और उसके ऊपर जब सोचते हैं ये करूं या ना करूं, कई तरह के संकल्प आते हैं, वो है इंटेलेक्ट। है ये आत्मा की शक्तियां।
बस अभी बहुत ही फैमिली में रहते हुए किस प्रकार से हम बैलेंस मेंटेन करें उससे संबंधित एक प्रश्न है। पूछा गया है हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट बट एट द सेम टाइम बीइंग अटैच्ड टू द फैमिली एंड ऑलवेज मेक देम रियलाइज दैट वी आर अटैच्ड टू द फैमिली। हम किस प्रकार से न्यारे भी रहें और सबके प्यारे बन के रहें, किस प्रकार से ये संभव है और कैसे हम करें इसको?
अच्छा, देखिए अटैचमेंट को खराब गिना गया है। कीप द रिलेशन, रिमूव द अटैचमेंट। अब आप देखेंगे कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार को हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं, क्यों कराते हैं? कि वहां उसका ध्यान अच्छी तरह रखा जाएगा। और हॉस्पिटल के सारा स्टाफ किससे तंग आता है? रिश्तेदारों से। वो आके कहेंगे इसको ये करना, इसका ध्यान रखना, वो कर भी रख रहे हैं। नहीं नहीं जरा खास ध्यान रखना, रख रहे हैं। अब आप देखिए एक नर्स है, वो अपना प्रोफेशन निभाती है, पेशेंट का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती है, घर वाले इतना नहीं रख सकते। घर वालों को मोह आ जाएगा, पेशेंट कहेगा थोड़ा लड्डू खिला दो, कोई बात नहीं, दवाई खा रहा हूं, कहेंगे अच्छा खा ले। वो तो नहीं करेगी, वो तो ध्यान रखेगी। फिर भी अगर पेशेंट किसी कारण से उसकी आयु पूरी हो गई है, वो डेथ हो जाती है उसकी, तो नर्स रोती है क्या? क्यों नहीं रोती? उसका रिश्तेदार नहीं है ना। अच्छा, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए अच्छी तरह, तो नर्स लड्डू बांटती है क्या? क्यों नहीं बांटती? क्योंकि उसका रिश्तेदार नहीं है, तो वो पूरा ध्यान रखती है ना। इसी प्रकार से बहुत सारी कहानियां हैं कि डॉक्टर सैकड़ों का ऑपरेशन करता है, जब उसका बेटा ऑपरेशन टेबल पे आ जाए तो कहता है दूसरे को तू कर दे, मेरा हाथ कांप जाएगा। कहानियां ऐसे कि फलाना स्वामी था, वो सर्जन था, लेकिन इसी कारण से वो बन गया। तो कहने का भाव ये है, कहीं भी आप देखेंगे आपकी जहां अटैचमेंट होगी यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। एक क्रिकेटर खड़ा है, वो सेंचुरी बनाने वाला है, लेकिन उसके सामने वही बॉलर आ जाए जिसने उसको पिछली बारी आउट किया है, तो वो अगर सोचे अरे ये तो फिर आ गया, तो गया ना, ये मामला है। इसलिए टू बी एबल टू परफॉर्म करेक्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव अटैचमेंट। अब राम जी को वनवास हुआ, कहानी है, दशरथ जी ने सुइसाइड कर लिया, क्यों? अटैचमेंट, यह मामला। इसलिए संबंध तो कहा, आप सब लोग कहते हैं जीवन एक यात्रा है, कहते कि नहीं? जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज अ जर्नी। अब आप रेलवे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ इधर भी पैसेंजर हैं, उधर भी पैसेंजर हैं, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, ऐसा थोड़ी सीधा बैठ के चले जाते हैं, भाई कौन हो, क्या हाल है, खाना पीना भी शेयर करते हैं, चिट चैट करते हैं। अच्छा, कभी आपने उनसे रिश्तेदारी गांठी? जो उस पैसेंजर का डेस्टिनेशन आता उतर जाता है। और एक और हैरानी की बात है, जब नया पैसेंजर आता है तो सब उसको रजिस्टर करते हैं, जैसे पता नहीं कौन आ गया स्ट्रेंजर। अगले स्टेशन तक वो उनका दोस्त बन जाए तो फिर नया आता है उसको रजिस्टर करते हैं। तो कहने का भाव ये कि जब हम जानते हैं जीवन यात्रा, हम सब इकट्ठे नहीं आए थे, ना हमने इकट्ठे जाना है, बीच में आते जाते हैं, जाते जाते हैं, उसी सिस्टम से भी हम ले लें कि यात्रा है, तो हम रिश्तेदारी तो नहीं गांठेंगे ना, संबंध रखेंगे। और ज्यादा डीपली सोचें तो एक नाटक में एक्टर होते हैं, ठीक है? अब एक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को कोई रोल मिल जाता है, किसी को कोई, क्या वो रियली समझते हैं कि मेरा बेटा है एक्टर? नहीं, उस बेटे को कोई तख्त पे बिठा देता है, कोई ताज दे देता है, कोई पीटता है, एक्टिंग में ऐसा पीटेगा जैसे असली पीट रहा है, लेकिन उसको कुछ तकलीफ तो नहीं होती ना कि मैं एक्टर हूं। हम भी एक्टर हैं, इस जन्म में हमारे को ये साथी मिल गए, एक्टिंग समझ के करो, ये आपके बचाव के लिए है। आप भले जितना मर्जी मोह करिए पर तकलीफ आपको होगी, तो तकलीफ से छुड़ाने के लिए बताया जाता है, अच्छी तरह पाठ निभाओ, ये सोचो पता नहीं मैं चला जाऊं या ये चला जाए, आप अपने न्यारे रहोगे। हम ब्रह्मा कुमारी में कितने लोग हैं, एनलार्ज फैमिली है, हमें भी कोई हमारा बीमार होता है, ऐसे तो नहीं हम कहते हैं कि तू पढ़ा रहे, नहीं ध्यान रखते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो हम रोने लग जाते हैं। आप घर में ट्राई करोगे आपका भी हो जाएगा, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, आप मन में धार लेंगे ना, अगर एक परिवार है आते रहेंगे जाते रहेंगे, रोज होता है ऐसा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, छाछ के अंदर मक्खन होता है, ठीक है, तो ऐसे मक्खन तो मिक्स होता है, तो जैसे हम आप यहां दबाएंगे तो हम कहेंगे ये दर्द हो रहा है, यहां भी आत्मा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अगर किसी का हाथ कट जाए तो आत्मा थोड़ी कट जाती है। मक्खन को जब आप चर्निंग कर लेते हैं, एक बार अलग हो गया वापस नहीं मिक्स हो सकता है। इसी तरह जब आप रियलाइज करेंगे कि मैं इस बॉडी से अलग हूं, आपको कोई हजार कोशिश करे कि नहीं तुम शरीर हो आप मान ही नहीं सकते, ऐसे ही ये मेरे संबंधी हैं, तो मेरे कहते हैं तो मुंह आता, संबंधी हैं उनसे अच्छी तरह पाठ बजाएं, अपना रोल अच्छे से अच्छा करें, लेकिन अटैचमेंट विल कॉज यू सफरिंग। किसी भी चीज से आप अटैचमेंट कर लेंगे अच्छी लगेगी, जब सेपरेशन होगा तो आपको तकलीफ होगी, इसलिए कहा जाता है ऐसा जुड़ो ही ना, सुपर ग्लू नहीं बनो, नॉन स्टिक बनो। ओम शांति।
बहुत खूब भाई साहब, एक नॉर्मल हम सब की एक मन में ये प्रश्न या एक डाउट आता है कि यहां तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ऐसी प्रेरणाएं भी मिल रही हैं कि हमको इसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए, शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, हमको यहां बहुत सहज भी लग रहा है, लेकिन वापस कार्य क्षेत्र में जाकर या घर में जब हम रहते हैं तो वहां पर थोड़ा हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, और जनरली लोग कहते भी हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या हम करें जिसकी वजह से हम वापस घर में भी जाकर यहां जैसे हम अनुभव कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे भी जाके करें। सो हाउ डू वी टेक टाइम, हाउ डू वी मैनेज टाइम?
देखिए जी, ये तो प्रायोरिटीज है, हर एक को 24 घंटे का दिन है, किसी को 25 घंटे का नहीं है, किसी को 23 घंटे का नहीं है। अब प्रायोरिटीज है कि आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं भी, आपको पता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा फाइलें होती हैं, सबसे ज्यादा काम होता है, अच्छा उस व्यक्ति को तो फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन जब आप सोच लेते हैं कि मेरी कुछ और प्रायोरिटी है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, जो लोग दफ्तर में जाते हैं शनिवार को हाफ डे होता है, आजकल पता नहीं होता है कि नहीं होता, हाफ डे होता है, अच्छा उस दिन व्यक्ति हाफ डे में सारे दिन का काम करता है कि नहीं करता? आपको ही मान लो हाफ डे के बाद कहीं जाना पड़ जाए तो आपका सुपीरियर कहता है भाई काम पूरा कर जा तू जा, तो आप उसी काम को आधे दिन में पूरा करके जाते हैं कि नहीं जाते? भाई जाना है अच्छा फटाफट फट कर लो, और नहीं तो आप ड्रैग ऑन करते हैं। इसलिए आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपके पास स्पेयर टाइम होगा। हम ऑफिस में जाते थे तो क्या हुआ कि मैं तो ब्रह्मा कुमार था तो मेरी आउटलुक दूसरी थी, मैं कोई जीनियस तो नहीं था, लेकिन ऑफिस में क्या होता है कि आपके नीचे वाला कुछ लिख के लाएगा, आप अपनी बुद्धि दिखाने के लिए कुछ और अच्छा लिखोगे, फिर आपके बॉस के पास जाए और कहेगा ऑफिसर ने बड़ा अच्छा लिखा है, ईगो। हम उसको बुलाते थे भाई ये लिख ला छुट्टी, तो टाइम बच गया, तो मेरी टेबल में फाइल ही नहीं होती थी, मैं अखबार पढ़ता था। एक दिन हमारा एक बॉस होता था, उसने कहा इसके पास तो काम ही नहीं है, उन्होंने मेरा डिपार्टमेंट बदल दिया। अच्छा फिर वो आते हैं इंस्पेक्शन पर आए तो फिर मेरे अखबार ही था, मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, मैं सारा बता करके ले आता हूँ, 10 मिनट आपके पास आता हूँ पूछ के कर लेता हूँ। तो फिर मेरे को लेटर मिला था हिज री सबमिशन इज वेरी क्विक, और कुछ नहीं था। बीच में मैं ईगो उड़ा दिया मैंने कि ये मेरा जूनियर है, ये मेरा सीनियर है। आप किसी भी काम को स्क्वीज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में इतनी पावर है। हमारी जानकी दादी जो 104 साल तक जी हैं, सारे विदेशों का उनके पास चार्ज था। उसके बाद जब यहां की दादी ने सिलीट छोड़ दिया तो इंडिया का भी चार्ज उनके पास आ गया। इतने सेंटरों का चार्ज होते है, संभालती थी ना, तो कैपेसिटी है व्यक्ति की। तो आप अगर टाइम ढूंढना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये समझे यहां का एक घंटा स्पेंड किया हुआ आपके 10 घंटे बचाएगा, या पक्का समझ लीजिए। आपकी आउटलुक बदल जाएगी तो टाइम निकल आएगा। बाकी ये है कि कांटेक्ट रखना आवश्यक है। इसलिए कल हमारी बहन एक सभा में कह रही थी, जिस कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है, कहती है अब आपको 3 आने देने पड़ेंगे। तीन आना दोगे? आजकल आना तो नहीं चलता, वो समझे क्या मामला है। तो कहती है एक तो अपने शहर में जाके एक बारी 5 मिनट भी सेंटर पर आना है। फिर उन्होंने समझाया कि आने का कितना फायदा है, तुम्हारा सारा दिन ध्यान रहेगा, बाबा का आशीर्वाद। फिर उसने कहा दूसरा, साल में एक बार माउंट आबू आना है। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहां से फिर वो शक्ति मिलती है। फिर उसने कहा तीसरा, कहते कि अपने साथ एक को माउंट आबू ले भी आना है, ये तीसरा आना है।
भाई साहब, हम यहाँ पर माउंट आबू में आए हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। यहाँ का पूरा सिस्टम को, कारोबार को, ऑपरेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन को जब हम देखते हैं तो सचमुच बहुत आश्चर्य लगता है कि कैसे हो रहा है ये। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो संस्था है, इसका जो कारोबार है वो कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन रिसोर्स है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैसे ये संस्था इतने खूबसूरत ढंग से स्मूथली कार्य करता है, उसके पीछे का राज हम जानना चाहते हैं।
ये ऑटोमेटिक चलता है, हर चीज दुनिया में लोग ऑटोमेटिक चाहते हैं ना, ऑटोमेटिक चलता है। क्योंकि हमने कुछ बेसिक असूलों को, प्रकृति के असूलों को फॉलो किया हुआ। आप बताइए कि प्रकृति ने कभी पानी पर कीमत लगाई है? और पानी आकाश से भी बरसाया, धरती पर भी बरसाया, कुएं से भी निकला, समुन्द्र में भी लगाई है। हवा पर कभी कीमत लगाई है? प्रकृति किस चीज पर प्रकृति ने कीमत लगाई है? पेड़ अपना फल दे रहे हैं, पशु दूध दे रहे हैं, धरती से अनाज उग रहा है, धरती से कपड़ा भी उग रहा है, कॉटन भी भगवान ने उगवा दी धरती से। अब आपने आज क्या किया? आज आप बोतल में पानी ले आए हैं, एयर प्योरीफायर रखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो फिर आपको तो सिस्टम सोचना ही पड़ेगा, पानी की बोतल कहाँ मिलती है, एयर प्योरीफायर कहाँ मिलता है। तो नेचुरल सिस्टम जो है उसमें हर चीज नेचुरल है। अब एनिमल किंगडम में देखते हैं, वो कोई रूल बनाते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट खोल रखा है कि कानून बनाओ। अब आप सोचो, हमने तो एक परमानेंट पार्लियामेंट खोल रखा है, परमानेंट, कि कानून बनाते ही जाओ, बनाते ही जाओ, जैसे पहले लोग गैर कानूनी थे। और ऐसा कभी सोचा है कि पेशेंट के सिर पर डॉक्टर खड़ा है, ऑक्सीजन सिलेंडर हर वक्त रखा हुआ? हमारी तो हालत ही दूसरी है ना। भगवान का असूल है, पहली बात, दुनिया में हर चीज दे रही है, हर चीज दे रही है, पहला असूल है। अगर कोई इसको समझ जाए कि कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है, हर चीज दूसरों के लिए बनी है। आपने बोल पड़े होंगे मेड फॉर ईच अदर, हम वो मेड फॉर अदर। अब यहां आप बैठे हैं, पंखा हवा दे रहा है, किसको दे रहा है? खुद को दे रहा है या आपको दे रहा है? आपको दे रहा है। कुर्सी कंफर्ट दे रही है, किसको दे रही है? खुद को दे रही है, आपको दे रही है। ये आवाज को ऊंचा कर रहा है, अपनी आवाज को कर रहा है या दूसरे चीज को कर रहा है? कोई चीज देख लो, मकान शेल्टर दे रहा है खुद को दे रहा है या दूसरे को दे रहा है। किसी मकान में 80 साल कोई ना रहे उसको कौन सा बंगला कहते हैं, हैं जी? सुना नहीं मैंने, क्योंकि कोई रहता ही नहीं। अच्छा बाहर चले जाइए, सूर्य रोशनी और गर्मी दे रहा है किसको दे रहा है, खुद को दे रहा है या दूसरे को दे रहा है? पेड़ फल दे रहे हैं खुद खाते हैं या आपको खिलाते हैं? ठीक है, भगवान को तो दाता कहते हैं। तो अगर आप यहां बैठे देने का अप्रोच रख लो, मुझे देना है क्योंकि सब देता है, उन सबको मिलता है जो देते हैं, तो क्या होगा? आपको कोई चेकर रखना पड़ेगा, कोई ऑडिटर रखना पड़ेगा, कोई अकाउंट रखना पड़ेगा कि नहीं? तो इस संस्था में सब देने वाले हैं, छुट्टी इतने देने वाले हैं कि सोचते हैं कोई लेने वाला आ जाए तो अच्छा। आप और आप देख लीजिए, देने में खुशी है, देने में खुशी है। आप नहीं देंगे तो आप अपनी खुशी को कम करेंगे, और कहीं उल्टा लेने लग गए तो मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मुझे ये सिखाया गया था। एक राजा था, उसकी आयु 50 साल हो गई, तो किसी ने कहा महाराज मरने के बाद किसने देखा है, आपके पास बहुत वेल्थ है, अपनी प्रजा में बांट दो। उसने मान लिया, थैलियां बना ली, प्रजा में अनाउंस कर दिया कि 10 to 1 आओ लाइन में लगो, थैली ले जाओ। एक बेगर था उस शहर में, वो भी लाइन में लग गया। बहुत देर बाद उसका टर्न आया तो उसने थैली नहीं ली, वापस जाके लाइन में लग गया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो सारे मीडिया में बेगर की तारीफ आनी शुरू हो गई, एक ऐसा भिखारी है लाइन में लगता है, जब नंबर आता तो लाइन छोड़ के पीछे लग जाता है। राजा को जेलसी हो गई कि पैसा तो मैं बांट रहा हूँ, मशहूरी उसकी हो रही, आजकल ऐसा ही है। तो राजा ने उसको बुलाया कि भाई तुम क्या नाटक करते है, 3 थैली ले ले, 10 ले ले, जा। उसने कहा महाराज मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? कहते मैं देखता था, लाइन में खड़ा था, आप थैली बांटते हैं आपके मुंह में प्रसन्नता आती है, आप थैली बांटते हैं आप खुश नजर आते हैं, तो मैंने सोचा देने में खुशी है, तो मेरे पास तो कोई देने के लिए नहीं, मैं टर्न दे देता हूँ, मुझे खुशी मिल जाती है। इसलिए ये कर्तव्य की विद्या है, यहाँ कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हर व्यक्ति करने आया है तो कोशिश करता मैं ज्यादा से ज्यादा करूं। आपने देखा होगा किचन में आप कहेंगे बस, वो कहेगा नहीं और लो। अब क्या है, सेवा भाव है। आप भी ये करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स वगैरह है नहीं। बाकी आपने क्या पूछा, ह्यूमन रिसोर्स,
फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स।
ह्यूमन रिसोर्स तो इतने लोग हैं हमारे पास, 800 इन्विटेशन है ब्रह्मा कुमारी सेंटर खोलने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी ऐसे टीचर नहीं है, क्योंकि हम कोई पेड टीचर तो रखते नहीं। धारणा वाली कन्याएं अभी 600 बहनें ट्रेनिंग ले रही हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स तो ऑटोमेटिक आता है। हर व्यक्ति अच्छे काम में लगना चाहता है। एक दिन था जब ब्रह्मा कुमारी में कोई किसी की बेटी चली जाए तो लोग ऑब्जेक्शन करते थे, आज वो खुश होते हैं कि मेरी बेटी, देखते हैं कि अच्छे अच्छे काम में लगे हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत है, ये सब आपका ह्यूमन रिसोर्स ही तो है, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कन्फाइंड टू द प्रेमिसेस नहीं है। कोई हमें कहता है आप अस्पताल खोल लो, आप स्कूल खोल लो, हम कहते हैं नहीं, यहाँ के भाई बहन स्कूल वाले आएंगे, कॉलेज वाले आएंगे, सर्विसेज वाले आएंगे, अपनी अपनी जगह जाके वो सिस्टम को लगाएंगे, यही ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि हमारा लक्ष्य लिमिटेड नहीं है, हमारा लक्ष्य तो कि सारे विश्व में वो थिंकिंग आ जाए ताकि ये सुखी हो जाए, आपको आर्मी न रखनी पड़े, मिलिट्री न रखनी पड़े, खाम खामे ये है। बेस्ट सोसाइटी वो नहीं है जिसमें हॉस्पिटल ज्यादा है, बेस्ट सोसाइटी वो है जिसमें एक भी हॉस्पिटल नहीं है, बेस्ट सोसाइटी वो नहीं है जिसमें आर्मी ज्यादा है, बेस्ट सोसाइटी है जिसमें आर्मी की आवश्यकता ही नहीं है। हम उसका ध्यान कर रहे हैं, वही सिस्टम यहां लागू किया हुआ। बाकी रहा पैसे की बात, तो हर व्यक्ति अगर चेक करेगा उसका बहुत सारा पैसा फालतू जाता है, आप देख लीजिए। अगर वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर करे, जितना रिक्वायरमेंट है उसके पास बचत हो सकती है। हमने एक बार सर्वे किया था गांव में, तो सिगरेट तंबाकू पर ही गांव वालों का बहुत पैसा जाता था, लिटिगेशन में, फैशन में, नकली शो में आदि आदि। आपको पता ही है, अपने दुनियादारी करने के लिए लोग लोन लेकर शादी करते हैं बच्चों की, वो सारा झंझट छोड़ के तो जो हमारे भाई बहन हैं उनका जो सेविंग होता है वो इसमें लगा देते हैं, तो अच्छी तरह संस्था चलती है। आज तक कभी संस्था को धन की कमी नहीं हुई है, लेकिन धन को प्रॉपरली यूज करते हैं, जहां खर्चा करना होता है वहां करते हैं। कई लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारी के वहां बहुत बढ़िया भोजन मिल रहा है, तो ये तो हमारी हॉस्पिटैलिटी है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह भोजन कराते हैं ना, पर हमारा नॉर्मल भोजन बड़ा सिंपल है, पहनना, फिर सारा काम हम खुद करते हैं। ये
भाई साहब, हम सब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस रीति से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये ईश्वरीय कार्य के लिए?
बस जो नियम हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करेंगे, आपके कंट्रीब्यूशन हो गया।
बहुत सुंदर,
यहाँ कंट्रीब्यूशन शब्द तो हम यूज ही नहीं करते जी। परिवार है हमारा, बाबा कहता था मेरे इतने बच्चे कमाए हुए हैं तो बाबा को क्या कमी है।
भाइयों और बहनों, प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है, और हम सब दिल से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, और ये संस्था में आकर के जो बातें आपने हमारे साथ शेयर की और बहुत स्पष्टता से, गहराई से चीजों को एक्सप्लेन किया, बहुत सारी बातें हमारे जहन में बहुत करेक्ट रीति से उतरी, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन की बात हम सब कर रहे थे, सबसे श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन है गुणों का दान देना, अपना समय का दान देना, अपनी विशेषताओं का ध्यान देना। अगर यही हम देना शुरू करेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप सही स्थान पर आ जाएंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप एक कोई मैसेज, एक आशीर्वचन जो हम अपने साथ लेकर के जाएं और उसको बहुत गहराई से चिंतन भी करें, अपने जीवन में धारण करें, हम फाइनल आपसे कुछ आशीर्वचन जिसको हम प्रैक्टिस कर सके हम लास्ट में सुनना चाहेंगे भाई साहब आपसे।
देखो जी, जैसे कोई स्विट्जरलैंड जाता है, सदा तो वहां नहीं रहता, एक हफ्ता रहेगा घर आ जाएगा, फिर कभी भी उसको गर्मी लग रही हो तो स्विट्जरलैंड को याद कर लेता तो थोड़ी ठंडा महसूस होता है। तो आप भी जो यहाँ के सुन देख रहे हैं, कभी आपको कहीं कोई ऐसे ट्रैफिक में फंस जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो आंख बंद करके माउंट आबू याद कर दिया करेंगे तो आपको राहत मिलेगी।
बहुत सुंदर, आदरणीय भाई साहब का फिर से आप सबकी ओर से तहे दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा ही ये श्रेष्ठ कार्य चलता रहे, और हम जैसे इस बार आए हैं अगली बार हम और अपने साथियों को यहाँ लेकर के आए और उन्हें भी एक ऑप्शन पता चले कि जीवन जीने का एक बहुत सुंदर, बहुत सहज, बहुत इजी राजयोग के अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आप सभी का, भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हम एक मिनट मेडिटेशन करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। Thanks.